मुक्षुमार्गसिनीतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तृणग्रहणमुपलक्षणं कस्यचित् व्यधनदुःखकारणस्य। किसी भी चुभने वाले दुख में हेतुभूत पदार्थ को तृण इस शब्द से उपलक्षण रूप में ग्रहण किया जा सकता है। तृण का अर्थ होता है कोई भी ऐसी तिनके जैसी कोई वस्तु पैर में जो चुभ जाती है, तो ऐसी अन्य भी बहुत सारी वस्तु हो सकती है, कांटे वगैरह सब, तो उपलक्षण में सबको ग्रहण करना, पैर में चुभ करके जो तकलीफ देती है उस वस्तु को यहाँ ग्रहण करना। तेन उससे क्या होगा, शुष्क तृण, सूखा हुआ जो तिनका होता है, गीला तिनका तो चुभता नहीं, सूखा हुआ जो तिनका होता है वो। फिर परुष शर्करा, जो कठोर बड़े दाने वाली जो कंकरी होती है, रेत से थोड़ी बड़ी होती है, उसको शर्करा कहते हैं। कंटक कांटे। फिर निशित मृत्तिका, ऐसी मिट्टी जो पैरों को काटती है। फिर शूलादि व्यधनकृत, और फिर कोई कीला है या और कोई ऐसी पैर में छुप जाने वाली वस्तु है, इनसे की हुई पाद वेदना प्राप्तौ सत्यम, चरणों की वेदना की प्राप्ति होने पर तत्रा प्रणिहित चेतसश, वहां अपना ध्यान न लगाने वाले जो साधु हैं, लगा है पैर में, चर्या शय्या निषद्या सुप्राणी पीड़ा परिहारे। चर्या में, शय्या में, निषद्या अर्थात आसन लगाकर बैठने में, प्राणी पीड़ा के परिहार में नित्यम अप्रमत्त चेतसस, नित्य ही सावधान चित्त रहने वाले साधु के तृणादि स्पर्श बाधा परिश विजयो वेदितव्य। तृणादिक के चुभने की बाधा रूप जो कष्ट है उस पर विजय जान लेना। अब इसके उपरांत मल परिश विजय, अपकायिक जंतु पीड़ा परिहाराय, जल कायिक जीवों को पीड़ा न हो, उनकी पीड़ा का परिहार करने के लिए, आमरणादस्नान व्रत धारिण, मरण तक स्नान व्रत को धारण करने वाले, मृत्यु तक कभी स्नान नहीं करेंगे। और पटु रवि किरण प्रताप जनित प्रस्वेदाक्त पवनानीत पांसुनिचयस्य, तीक्ष्ण सूर्य की किरणों के प्रताप अर्थात उसकी तपन से जनित प्रस्वेद, उत्पन्न हुआ पसीना, और उससे आक्त, पूरा शरीर उससे लिप्त है, और पवनानीत पांसु निचेस्य, और उस पसीने पर जो पवन से आनीत, वायु से लाए हुए पांसु नीचे यानी धूल के जो समूह है, वो धूल आकर के चिपक गई उनके शरीर में पसीने के ऊपर। और सिद्म, सिद्म का अर्थ होता है सेहुआ, एक चर्म रोग होता है जिसमें त्वचा का वर्ण कहीं कहीं पर थोड़ा फीका हो जाता है। सिद्म सेहुआ बोलते हैं उसको। फिर कच्छू, कच्छू भी एक चर्म रोग है, उसको खाज लिखा है पंडित जी ने अनुवाद में। फिर दद्रु, दद्रु का अर्थ होता है दाद, रिंगवर्म, और उससे उदीर्ण कंडुयायाम, उससे उत्पन्न होने वाली जो खुजली है उसके होने पर उत्पन्नायाम अपि, उसके उत्पन्न हो जाने पर भी कंडुयन विमर्दन संघटन विवर्जित मूर्ते, खुजलाना या फिर उसको विमर्दन करना, ऐसे दबाना, या फिर संघटन यानी ऐसे रगड़ना आदि से रहित है शरीर जिनका, यानी ये कोई प्रवृत्ति वो नहीं करते। स्वगत मलोपचय परगत मलापचयो हो असंकल्पित मनस, असंकल्पित मनस, अपने शरीर में जो धूल जम गई है और दूसरे साधुओं के शरीर में जो धूल जमी हुई है, तो अपने शरीर की और दूसरे साधुओं के शरीर की धूल को दूर हटाने के प्रति जिनका मन संकल्पित नहीं होता, अर्थात जिनके मन में उस मल के प्रति ग्लानि उत्पन्न नहीं होती, उसको हटाने का संकल्प उनके मन में उत्पन्न नहीं होता, बल्कि सज्ञान चारित्र विमल सलिल प्रक्षालनेन कर्म मल पंक निराकरणाय नित्यमुद्यतम मतेहे, नित्यमुद्यत मतेहे मल पीड़ा सहनमाख्यायते। अब ये जो धूल जमी हुई है शरीर में अपने साधु के, दूसरे साधुओं के भी शरीर में धूल है, तो न अपनी धूल को हटाने की उनके अंदर भावना होती है, न दूसरे साधुओं के शरीर की धूल साफ करने का भाव होता है, बल्कि सम्यक ज्ञान और चारित्र रूपी निर्मल जल के प्रक्षालन द्वारा कर्म, मतलब उसके स्नान से, उसके द्वारा प्रक्षालन करने से कर्म रूपी मल और पंक यानी कीचड़, और ये शरीर का मैल तो पुद्गल पुद्गल पर लगा हुआ है ना, मैं तो जीव हूं तो मेरी आत्मा पर जो मैल लगा हुआ है कर्मों का मैल है, वो उसका निराकरण करने के लिए मुझे सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी निर्मल जल से नहाना पड़ेगा। तो उससे वो नित्य मुद्यत मते, हमेशा उनकी मति उसी में उद्यत रहती है, पुरुषार्थ रत रहती है, ऐसे साधु के मल पीड़ा सहन आख्यायते, मल से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को सहन करना आख्यायते कहा जाता है। अब सत्कार पुरस्कार परिषद का विवरण है। सत्कार पूजा प्रशंसात्मक, सत्कार शब्द का अर्थ होता है पूजा और प्रशंसा। इसमें नहीं दिए, अच्छा टिप्पण में दिए। केश लुंच हमारे मन में आ तो रहा था कि केश भी एक प्रकार से मल है, पर फिर देखिए क्या कह रहे हैं, केश लुंच संस्काराभ्याम उत्पन्न खेद सहनम, संस्काराभ्याम है, केश लुंचन होना था, तो वो तो लुच हो ही जाता है, लुंच शब्द नहीं बनता, लुंचन, केश लुंचन संस्काराभ्याम उत्पन्न खेद सहनम मल सामान्य सहने अंतर भवती, मल सामान्य को सहन करने के अंतर्गत ये केश लुंच से उत्पन्न जो खेद है उसको भी सहन करना सम्मिलित होता है। अब लेकिन ये द्विवचन क्यों दिया, केश लुंचन संस्काराभ्याम, असंस्काराभ्याम अगर होता ना फिर शरीर को संस्कारित नहीं करना, सजावट नहीं करना, ये बन सकता था, लेकिन केशलुंचन और संस्कार द्वारा, द्विवचन है असली में, केशलुंचन अलग हो जाएगा, संस्कार अलग हो जाएगा। केशलुंचना संस्काराभ्याम उत्पन्न खेद सहनम, फिर ठीक है इस पर और विचार कर लेंगे, कोई अर्थ निकलता हो तो इस पर और देखेंगे। सत्कार पूजा प्रशंसात्मक, सत्कार का अर्थ होता है पूजा और प्रशंसा, यानी पूजा और जयमाला, पूजा होती है ना उसके बाद अंत में स्तुति करते हैं, तो वो जो प्रशंसा है वो स्तुति रूप है, प्रशंसा वास्तव में मन की परिणति है, लेकिन वही प्रशंसा जब वचनों में आती है तो उसको स्तुति कहते हैं, तो अभिप्राय वही है। कि पूजा और स्तुति रूप सत्कार होता है। अब कई कहते कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पूजा नहीं सत्कार चल सकता है, पूजा नहीं चलेगी। अरे भाई सत्कार चल सकता है तो सत्कार में तो पूजा के अतिरिक्त स्तुति भी ऐड हो रही है। पूजा में तो अकेली पूजा थी, पूजा में जयमाला नहीं थी, लेकिन यहां पर क्या हो गया, सत्कार में पूजा के साथ जयमाला और जुड़ रही है। तो अगर सत्कार मान्य हो तो और बड़ी बात है, पूजा अमान्य है और सत्कार मान्य है, तो सत्कार में पूजा प्लस स्तुति दोनों शामिल है। पुरस्कारो नाम, अब पुरस्कार क्या वस्तु है, क्रियारंभादिष्वग्रत करणम आमंत्रणम वा। देखिए पुरस्कार शब्द आचार्य महाराज सूत्र में सत्कार और पुरस्कार शब्द आया हुआ है, पर पुरस्कार शब्द का अर्थ क्या लिखा है कि पुरस्कार नाम क्रियारंभादिशु, कोई भी क्रिया प्रारंभ करनी है तो उसके प्रारंभ आदि करने में अग्रत करणम उनको आगे करना, आमंत्रणम वा या फिर उनको आमंत्रित करना। कोई भी प्रोग्राम है तो आप साधु को पहले बुलाते हैं, उनको आमंत्रण देते हैं, तो पंचकल्याणकादिक क्रियाओं के आरंभ में उनको सामने करना साधुओं को, ये पुरस्कार है। अथवा क्रियारंभादिशु, आप पूजा की क्रिया करना चाह रहे हैं तो उसके प्रारंभादिक में अग्रतः करणम आमंत्रणम उनको अपने आगे करना, उनको आमंत्रित करना। जैसे एक पीठ होता है ना, पूजा करते समय एक पीठ रखते हैं और उस पीठ पर अक्षत पुष्प आदि में भगवान का आह्वान करते हैं, ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्रावतर अवतर संभव षट आह्वानम अत्र तिष्ठ तिष्ठ, क्या बोलते हैं, ठह ठह स्थापन अत्र मम सन्निहितो भव भव वशट। ये जो है ये पुरस्कार है। अब चूंकि सूत्र में सत्कार पहले है और पुरस्कार बाद में है, उसका कारण है कि सत्कार में 3 अक्षर और पुरस्कार में 4 अक्षर है, तो जिस शब्द में अक्षर अधिक होते हैं उसको बाद में लिखना पड़ता है सूत्र में। ये एक सामान्य नियम है कि सूत्र में कम अक्षर वाला शब्द भले क्रिया करते समय वो कम अक्षर वाली क्रिया बाद में हो, इसमें ऐसा ही है कि पहले तो आह्वान स्थापन सन्निधिकरण कर रहे हैं, इसको आमंत्रण कहते हैं, और उसके बाद पूजा और जयमाला कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया है, ये गुरु के साथ भी होती है और परमेष्ठियों के साथ होती है, सभी जिनवाणी में जिनवाणी की पूजा करोगे तो वही यही प्रक्रिया होगी। अब इसमें क्या है कि जो प्रश्न आता है कि जब भगवान सामने ही है तो फिर आह्वान करने की क्या आवश्यकता है, तो उसका उत्तर है कि अपन भगवान तो सामने ही, वो तो 24 घंटे वहां पर विराजमान है, आप यहां पर आए हो उनकी भक्ति करने के लिए, तो आप पूजा प्रारंभ कर रहे हो, उनकी पूजा प्रारंभ कर रहे हो, तो पूजा प्रारंभ करने से पूर्व उनको आगे कीजिए, अपने पास बुलाइए और अपने निकट बुला करके पूजा करिए। यहां हृदय में विराजमान करने की कोई बात है नहीं इसमें। अभी वर्तमान में ऐसा भी चलता है कि आह्वान करते हैं तो फिर ये ऐसे इशारा करते हैं, ऐसे बुलाते हैं ना, ये सब इशारे पता नहीं कहां से आए हैं, कौन से ग्रंथ में, हमने अभी तक देखे नहीं है। पर हम देखो इस बारे में हम ये नहीं कहना चाहते कि हमने नहीं देखे हैं इसलिए वो हमें अमान्य है, ऐसा भी ऐसी बात नहीं है, पर अपन तत्व पर विचार करके देखें तो फिर विचार करने पर यह पता चलता है कि सम्यक दृष्टि के हृदय में परमेष्ठी को बुलाया नहीं जाता, उसके हृदय में परमेष्ठी होते हैं तभी वो सम्यक दृष्टि होता है। आप बुलाओगे और फिर विसर्जित करोगे क्या, हृदय में बुलाकर उनको फिर वापस भेज दोगे क्या, ये पता नहीं, ये समझ में नहीं आती ये बातें। तो वो हृदय में स्थापित करने की बात ही नहीं है, वो तो सामने जो पीठ है, आराधना करते समय उपासना करते समय जो अपन पूजा करने जा रहे हैं तो उनको अपने उस पीठ के ऊपर अष्टमंगल द्रव्य में एक सुप्रतीक नाम का द्रव्य है, नाम सुना होगा आपने सुप्रतीक। वो जो सुप्रतीक नाम का जो अष्टमंग एक मंगल है, वो मंगल भगवान की स्थापना के लिए होता है, अक्षत आदिक में भगवान की स्थापना करने के लिए होता है। और अभी इन 10 दिनों में कुछ लोग हमारे विद्यार्थी जो बाहर गए हुए थे, उनको प्रश्न पूछा गया कि जब भगवान सामने है तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है। तब हमने शास्त्र के जो आधार भेजे थे उनको, वो आपको दिखाते हैं। इन्हीं 10 दिनों की बात है, प्रश्न पूछा गया था तो फिर उसके उत्तर थे शास्त्रों से। क्योंकि आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो गई, पूजा की आपने आराधना संपन्न कर, नहीं कर सकते। परमानेंट स्थापना का निषेध है वसुनंदी श्रावकाचार्य में। परमानेंट स्थापना इस काल में हुंडा उसर्पणी में तदाकार ही की जा सकती है। ये जो अक्षत और पुष्प में जो स्थापना करते हैं वो तात्कालिक स्थापना होती है, इसलिए विसर्जन करना होता है। ये जब भगवान की तदाकार प्रतिमा सामने है तब ठोने में अर्थात सुप्रतीक में अतदाकार स्थापना क्यों करना, ये प्रश्न आया था। इसका उत्तर है 22 परिषहों में सत्कार पुरस्कार आता है। सत्कार का अर्थ पूजा स्तुति है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है सत्कार पूजा प्रशंसात्मक अध्याय 9। पुरस्कार का अर्थ आगे करना होता है। सूत्र में अल्पाक्षर होने से सत्कार पहले है, लेकिन क्रिया में पुरस्कार पहले है। प्रतिमा को अपने सामने उठाकर न लाते हुए पीठ ठोने पर अक्षत पुष्प आदि में भगवान के आह्वान स्थापन सन्निधिकरण करने को पुरस्कार कहते हैं। तदुपरांत जो विधिवत पूजा जयमाला होती है वह सत्कार है, सत्कार पुरस्कार। आचार सार ग्रंथ के 5 चारित्राधिकार के श्लोक 27 में अक्षत आदि को चंद्रप्रभ जिनेन्द्र मानकर ठोने पर स्थापित करना स्थापना सत्य का दृष्टांत है। वसुनंदी श्रावकाचार में हुंडाव सर्पणी में अतदाकार स्थापना का निषेध जिनालय में वेदिका की अपेक्षा किया गया है, सुप्रतीक पर स्थापना करके विसर्जन की अपेक्षा नहीं। आचार सार में के और वसुनंदी श्रावकाचार दोनों के रचनाकार सिद्धांत चक्रवर्ती थे। वसुनंदी श्रावकाचार के रचनाकार वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती थे, आचार सार के रचनाकार वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती थे। अतः उनके कथनों में वैचारिक मतभेद न मानकर केवल विवक्षा भेद मानना है। वसुनंदी महाराज ने मना किया है कि हुंडाव सर्पणी में अतदाकार स्थापना नहीं करना, और वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि अक्षत आदिक में चंद्रप्रभ भगवान की स्थापना करना। तो क्या दोनों में कोई वो चल रहा था क्या, कांग्रेस भाजपा जैसा कोई विवाद चल रहा था क्या? सवाल ही नहीं। एक प्रमाण देकर जनता से छल करना महापाप है। दोनों आचार्यों की बात सामने रखो और फिर उनमें समन्वय करो, क्योंकि आगम के साथ किया हुआ छल अनंतानुबंधी माया ही हो सकता है, और कोई दूसरे प्रकार की माया आगम से छल नहीं करवा सकती। हुंडाव सर्पणी में अतदाकार स्थापना नहीं करनी चाहिए, इस गाथा का जोर शोरों से प्रचार है। लेकिन वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि चावल में और पुष्पों में चंद्रप्रभ भगवान की स्थापना करना ये बात जानकारी में नहीं है किसी को। ये दोनों सिद्धांत चक्रवर्ती थे। अब यहां इन दोनों में प्राचीन अर्वाचीन की चर्चा करना विक्षिप्त प्रलाप मात्र है। सिद्धांत चक्रवर्ती में क्या तुलना करोगे? आपके पास है क्या सिद्धांत का कुछ भी? षटखंड आगम के अभी एक सूत्र पर प्रश्न करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। ज्ञान का मद नियम से पतन का कारण बनता है, इसलिए अभिमान छोड़ करके दोनों आचार्यों के वचनों को स्वीकार करना आवश्यक है। ये हम यहां बैठे हुए श्रोताओं से नहीं कह रहे, जो लोग ऐसे उपद्रव कर रहे उनसे हम कह रहे पर उनसे भी हम ऐसे कषाय पूर्वक नहीं कह रहे, हम केवल एक बात कह रहे हैं उनसे कि जनता को भ्रमित करके आपको क्या मिल जाएगा। ये हम पूछ रहे हैं उनसे कि आपको क्या मिल जाएगा? आप अलग से अपना कोई नया मोक्ष मार्ग चलाना चाह रहे हो क्या? आपके पास कोई शॉर्टकट आ गया क्या मोक्ष जाने का? तो फिर ये सब नई नई बातें क्यों बता रहे हो जनता को? जो लिखा है वो बताओ ना, श्लोक बताओ, हुंडाव सर्पणी वाली गाथा के साथ ये भी बताओ आचार सार में क्या लिखा है श्लोक। हम तो तीनों प्रमाण दे रहे हैं ना आपके सामने, और फिर देखो क्या है। अब फिर हल करो, उसका समाधान दो क्या है। तो समाधान यही है कि वेदिका पर अतदाकार स्थापना नहीं करनी है, लेकिन पूजा करते समय आपने जो आह्वान किया उनका, ये पुरस्कार की विधि कैसे होगी? पूजा के समय सत्कार कर रहे हैं आप, बिना पुरस्कार के करोगे क्या सत्कार? कर ही नहीं सकते। तो ये विधि है। इस प्रकार ये सत्कार पुरस्कार का विवरण आता है शास्त्र में। तो चिरो, अब देखिए क्या होता है, तत्रानादरो मयि क्रियते। इस साधु, कोई ऐसे साधु हैं जिनका इतना, जिनको लगता है कि मेरे प्रति अनादर किया जा रहा है, लोग मेरा ढंग से सत्कार पुरस्कार नहीं कर रहे हैं, ऐसा विकल्प आ जाता है मन में। अथवा चिरोषित ब्रह्मचर्य से, चिरकाल से मेरा ब्रह्मचर्य सुरक्षित है, महातपस्वी ने मैंने महान तप किया है, और स्वपर समय निर्णयज्ञ से जिनमत और परमत दोनों के निर्णय को मैं जानता हूं। पूरे जगत में जो 363 मत हैं उनमें एक एक के निर्णय का मुझे ज्ञान है। बहुकृत्व परवादि विजयिन, बहुत बार मैंने अन्य मतियों को वाद विवाद में पराजित कर लिया है। प्रणाम भक्ति संभ्रम आसन प्रदानादीनी में न कश्चित करोति, न तो कोई मुझे प्रणाम करता है, न कोई भक्ति करता है, न कोई एकदम हड़बड़ी से उठकर मुझे मेरा स्वागत करता है, न मुझे आसन देता है बैठने के लिए, ये सब कोई नहीं कर रहा है मेरे प्रति। मिथ्या दृष्टि एव अतीव भक्तिमंत। अब मिथ्या दृष्टि ही अत्यंत भक्ति संपन्न होते हैं, ये जैनी लोग कुछ नहीं करते रहते। किंचित अजानंतनमपि सर्वज्ञ संभावनया सम्मान्य स्वसमय प्रभावनम कुरंति। बोले कि किसी अज्ञानी की भी भगवान मान करके अपने धर्म की प्रभावना करते हैं। व्यंतरादेह पुरा अत्युग्र तपसाम प्रत्यग्र पूजाम निर्वर्तयन्तीति मिथ्या श्रुतिर, यदि न स्यात् इदानीं कस्मान् मादृशाम् न कुर्वन्ति इति। व्यंतरादिक पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या करने वालों की प्रत्यक्ष सामने से पूजा करते थे, रचते थे। यदि ये कथन मिथ्या नहीं होता तो आज इस समय मेरे जैसे साधु की तपस्या देख करके भी कोई मेरी पूजा क्यों नहीं करते व्यंतरादिक देव आकर के। इति दुष्प्रणिधान विरहित चित्तस्य, इस प्रकार के विकारी भाव से रहित रहता है चित्त जिनका, कोई अपमान करे सम्मान करे कोई उनका उस तरफ विकल्प नहीं रहता, ऐसे साधु के सत्कार पुरस्कार परिषय विजय इति विज्ञायते। सत्कार पुरस्कार परिषय पर विजय है ऐसा विशेष जाना जाता है। कि जिनको बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता, तो ये निश्चित होता है। कहां पर? मिथ्या दृष्टि एव अतीव भक्तिमंत। मिथ्या दृष्टि अत्यंत भक्ति संपन्न होते हैं। ये लोग जो जैन लोग हैं, ये ढंग से भक्ति नहीं करते। ये तो मिथ्या दृष्टि लोग ज्यादा बढ़िया ढंग से भक्ति करते हैं। और किंचित अजानंतम, कुछ भी ना जानने वाले की सर्वज्ञ संभावना, सर्वज्ञ के जैसे आदर पूर्वक सम्मान उनके सम्मान करते हैं। और स्वसमय प्रभावनम कुरुन्ति, अपने धर्म की प्रभावना करते हैं मिथ्या दृष्टि लोग। और ये लोग जैनी होकर, स्वाध्यायी होकर भी मेरे जैसे तपस्वी और ज्ञानी को परख नहीं पाते और फिर मेरा ठीक से आदर नहीं करते। ऐसे विचार न करने वाले साधु को सत्कार पुरस्कार परिचय विजय होती है। यानी यहां पर आदर प्राप्त न होने पर जो पीड़ा होती है, उसको सत्कार पुरस्कार परिचय कहा है। आदर प्राप्त होने पर जो कषाय आती है वो नहीं, अंग पूर्व प्रकीर्णक विशारदस्य। अंग पूर्व और प्रकीर्णकों में जो विशारद हैं, शब्द न्याय अध्यात्म निपुणस्य मम। शब्द यानी व्याकरण, न्याय और अध्यात्म में जो निपुण है, ऐसे मम पुरस्तात मेरे सामने इतरे भास्कर प्रभा विभूत खद्योत उद्योत वत नितराम नाव भासंत इति। बाकी जितने भी छोटे मोटे साधु हैं, जितने छोटे मोटे विद्वान हैं, वो मेरे सामने सूरज के समक्ष जुगनू के समान है। फायरफ्लाई होता है ना, रात में जो लाइट करता है, यानी इतना मेरा जो अध्ययन है उसके सामने ये बाकी लोग तो सूरज के सामने जुगनू के समान है। इति विज्ञान मद निराश। इस प्रकार से विज्ञान का मद होता है नशा, अभिमान, उसका त्याग कर देने का नाम प्रज्ञा परिषय जय है। प्रत्येवतव्य प्रज्ञा परिषय विजय, ऐसा मान लेना। अग्नियम नवेत्ति पशु समा इत्यवाद्यधिक्षेप वचनम सहमानस्य। कोई साधु हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी आ नहीं पाता, ज्ञानावरण का क्षोभक्षम नहीं है। तो फिर कभी कभी तो जो उपाध्याय है परमेश्वरी है या फिर जो आचार्य हैं, वो कहते हैं कि बड़े अज्ञानी हो तुम, कुछ भी नहीं समझते। बोले होता है कई बार डांटते हैं गुरु महाराज, कुछ नहीं समझते हम। बोले जैसे किसी पशु को कुछ समझाओ तो नहीं समझता, तुम साधु होकर भी कुछ नहीं समझते। बोले इतना पढ़ाते हैं तुमको कुछ भी नहीं समझते, कैसे अज्ञानी हो। ये शब्द जब बोलते हैं तो ऐसे अधिक्षेप वचनों को वो सहन करते हैं। परम दुश्चर तपोनुष्ठाइनो नित्यम प्रमत्त चेतसो मेद्यापि ज्ञानास्तिशयो नोत्पद्यत। इतना सब मैं सहन कर रहा हूं और खूब कठिन तपस्या कर रहा हूं और निरंतर मैं सावधान चित्त रहता हूं, लेकिन मुझे अब भी कोई ऐसा ज्ञान का कोई चमत्कार नहीं हो रहा है कि एकदम अचानक आज मैं रात को सो रहा हूं फिर उठते ही साथ मुझे एकदम कोई अलौकिक ज्ञान हो जाए। ऐसी कोई रिद्धि या कोई ऐसी शक्ति मुझ में उत्पन्न नहीं हो रही है। इति अनभिसंदधतो ज्ञान परिषहु जयो गंतव्य। इस प्रकार से विचार और मन को एकाग्र न करने वाले, यानी मन को इस रूप से एकाग्र नहीं करेंगे आर्त ध्यान में कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, निर्मल मन को रखते हैं, शांत रखते हैं। मैंने ज्ञानावरण के प्रत्यय पूर्व काल में अंगीकार करके तीव्र बंद किया है, आज वही मेरे लिए बाधक है। अब जो कर्म किया है तो फिर अपनी अभीष्ट वस्तु में यदि बाधक बन जाए तो फिर क्या क्लेश करना। किसी ने कोई गलती की, उसको 5 साल की सजा मिली है, तब वो पांच साल काट ले, रोज दीवारों से अपना सिर मार मार करके क्या मिलने वाला है, शांति से पांच साल निकाल ले फिर बाहर हो जाए। उसी प्रकार ये कर्म का उदय चल रहा है, ये भी एक प्रकार से सजाई है, दंड है। तो जो मैंने किया है उसी का मुझे फल मिल रहा है, तो ठीक है। प्रज्ञा परिषज है और फिर अज्ञान परिषज है, और इसके उपरांत परम वैराग्य भावना शुद्ध हृदय से, उत्तम वैराग्य की भावना से शुद्ध हो चुका है हृदय जिनका, और विदित सकल पदार्थ तत्वस्य, जान लिया है संपूर्ण पदार्थों के स्वरूप को जिसने, और अर्हद आयतन साधु धर्म पूजकस्य, अरहंतों के जो आयतन है कल्याणक स्थान और जिनालय आदि हैं, साधु हैं, तीन प्रकार के साधु होते हैं, आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु, और धर्म, इनकी मैं पूजा करता हूं, मैं इनको पूजता हूं, और चिरंतन प्रव्रजित्यापि, और चिरकाल से मेरी दीक्षा हुई हुई, मैं बहुत पुराना दीक्षित हूं, तो आज भी मैं ज्ञानातिशय नोत्पद्यते, मुझे कोई ज्ञान विषयक चमत्कार नहीं उत्पन्न हो रहा है, महोपवासाद्यनुष्ठाइनाम प्रातिहार्य विशेषा प्रादुरभुवन्निति प्रलाभ मात्रम अनर्थिकेयम प्रव्रज्या। अब यदि ऐसा सब होने के बाद भी ये विचार आ जाए मन में कि बड़े बड़े उपवास का अनुष्ठान करने वालों के प्रातिहार्य विशेषा प्रादुरभुवन, पूर्व काल में बड़े अतिशय उत्पन्न हो गए थे, ये प्रलाप मात्र, ये सब बातें हैं, सिर्फ लुभावनी बातें हैं ये, और अनर्थिकेयम प्रवृज्य, मेरी दीक्षा बेकार है, इतना सब करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, मेरी दीक्षा व्यर्थ है। विफलम व्रत पालनम, व्रतों का पालन करना, व्रतों की रक्षा करना भी निष्फल है, कोई उसके परिणाम नहीं निकल रहा है। इत्येवम् असमादधानस्य, इस तरह से अपने मन को उसमें ऐसे विचारों में न लगाने वाले जो साधु होते हैं, उनके दर्शन विशुद्ध योगात, सम्यक दर्शन की पवित्रता के योग से, अदर्शन परिशह सहनमवसातव्यम्, अदर्शन परिशय माने अश्रद्धा रूप जो कष्ट होता है उस पर विजय जान लेना, एवं परिशहान असंकल्पोपस्थितान सहमानस्यासंक्लिष्ट चेतसो रागादि परिणामाश्रव निरोधान महान संवरो भवति। इस प्रकार असंकल्पोपस्थितान, परिशय कैसे होते हैं, तप और परिशय में अंतर क्या है, तप और परिशय जो है दोनों उत्तर गुण है साधु के, 28 मूल गुण है और 34 उत्तर गुण है, 34। 28 मूल गुण कौन से, 28 जो मूल गुण होते हैं ना मुनियों के, वो है पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्रिय निरोध, फिर षट आवश्यक, और शेष सात गुण, केश लोंच, एक भुक्ति, स्थिति भोजन, भूमि शयन, अदंत धावन, स्नान, नग्नत्व, ऐसे ये 28 मूल गुण होते हैं। श्वेतांबरों में 27 होते हैं, नग्नत्व को छोड़कर 27 मूल गुण होते हैं। हर्बर्ट वॉरन की एक पुस्तक है जैनिज्म, अभी हमें परसों ही मिली है, उसमें 27 मूल गुण लिखे हुए हैं। कम से कम नहीं, एक कम है, नग्नत्व, नेकेडनेस इज मिसिंग फ्रॉम दैट। अब लेकिन वो स्थिति भोजन वाली बात पता नहीं है, वो हो सकता है कि 27 की जो संख्या है वो इससे कुछ डिफरेंट हो, ये भी पॉसिबल है। नहीं, विशेष गुणों में, मूल गुणों में आता है। उत्तर गुणों में जो है, हम बता रहे ना आपको, उत्तर गुणों में 22 परिशयों पर विजय और 12 तप आते हैं। तो तप जो होते हैं वो संकल्पित उपस्थित होते हैं, यानी तप कभी भी बिना संकल्प के नहीं करते हैं, संकल्प पूर्वक जो किया जाता है उसको तप कहते हैं। और परिश्रय और तप में इतना ही अंतर है कि परिश्रय बिना संकल्प के आ जाते हैं। भूख का कोई संकल्प करता है या उपवास का संकल्प कर सकते हैं? तो क्षुधा परिश्रय और उपवास तप है। क्षुधा का संकल्प नहीं किया था साधु ने, उन्होंने उपवास का संकल्प किया था। ऐसा है सहमानस्य, उनको सहन करने वालों वाले साधु के। और कैसे साधु हैं? असंक्लिष्ट चेतस, चेतस में मन में संक्लेश नहीं करने वाले हैं वे। तो ऐसे साधु के रागादि परिणाम आश्रव निरोधात्, रागादिक परिणाम रूप जो आश्रव होते हैं, राग द्वेष रूप जो आश्रव होते हैं, उनका निरोध हो जाने से महान संवर होती, बड़ा भारी संवर होता है। इस तरह ये परिश्रय जय का सूत्र संपन्न होता है। इसके बाद परिश्रय के स्वामी कौन कौन होते हैं वो बताते हैं, और फिर ये भी बताएंगे कि कौन से कर्म से कौन सा परिश्रय संबंध रखता है, ये भी बताएंगे। जैनम जयतु शासनम।